HD Smartcast.
You're listening to a Hindustan Times production brought to you by HD Smartcast.
You're listening to On the Record with me, Sunetra Chaudhary. Now, it's election time. Elections have been announced in 5 states, and perhaps as soon as it's done, the big headline making waves across the country is a spate of resignations that are emerging from Uttar Pradesh. Already, we've had 2 ministers resign, both OBC ministers, and other OBC faces or MLAs resign from the ruling Bharatiya Janata Party. Now, what does this all mean? To understand that, we are today joined by OP Rajbhar. He's a former ally and an OBC leader of the Bharatiya Janata Party. He quit the Bharatiya Janata Party in 2019. And now he's part of the opposition alliance with the Samajwadi Party. So he's someone who's seen, who's a key player in the OBC community, who's seen the way the BJP works, the government works over there. And he gives us great insight as to why the community, which makes a huge chunk, more than 40% of the vote bank in the state, is said to be the other backward classes' vote. And he is a key leader in that. So he gives us insight as to why OBC leaders are so upset with the party and what he thinks could be the impact of that. So let's listen to OP Rajbhar. तो सर, सबसे पहले तो आप अभी ऑपोजिशन के नेता बन गए हैं, यूपी में सपा के एलाय हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन आपने भी भाजपा के साथ काम किया है, हम पिछले 2-3 दिनों में देख रहे हैं कि एक के बाद एक मंत्री और जो कि विधायक हैं वो भाजपा छोड़ रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्यों, किस वजह से ये हो रहा है?
देखिए, 3 साल पहले ही जब मैंने भाजपा छोड़ी, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो 18 साल मैं इन्हीं चीजों को लेकर झेला वहां। जब हम जान गए कि ये पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के दुश्मन हैं, इनके विरोधी हैं, इनका हिस्सा नहीं दे पाएंगे, इनका हिस्सा लूट रहे हैं, ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, अहंकार हो गया है, तो मैंने आज के 3 साल पहले इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। आज वही बात की पुष्टि माननीय दारा सिंह चौहान भी लगा रहे हैं, वही बात माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने वही आरोप लगाया है, और जितने पिछड़े दलित समाज के लोग भाजपा में हैं, अगर उनको हाफ कैमरा अगर बात करिए तो वो अपने दिल की बात करने लगते हैं कि अब हम लोग कहाँ करें, कुछ कर नहीं सकते, हम लोग उपेक्षित हैं, हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी का विदाई 2022 में करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने जो 3 साल पहले मैं कह दिया हूँ वो अब धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है। और देखिएगा, 10 मार्च को 10 बजे दिन में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घर से नहीं निकलेगा, टीवी बंद कर देगा, ये होने जा रहा है।
ये आपने बात कही सर कि जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी नेता आपकी तरह हैं, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आप, ये तो जनरल बात है, आप क्या कुछ स्पेसिफिक, मतलब एकदम ऐसी कोई बात हुई हो, ऐसा कोई निर्णय हुआ हो जो कि उनके खिलाफ ऐसे बता सकते हैं?
देखिए, अभी ज्वलंत मैं बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में योगी जी ने कहा बड़ी पारदर्शिता हुई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, जांच में ये पाया गया कि 27% जो पिछड़ों का कोटा है रिजर्वेशन है, और 22.5% जो अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा है, ये दोनों पूरा नहीं हुआ। उसके सटीक उत्तर आप ये जान लीजिए कि अभी योगी जी ने अपने आईडी से ट्वीट करके लिखा कि आरक्षित वर्ग के भर्ती में जो धांधली हुई है उसको हम पूरा करेंगे, पद 23,000 अब भर्ती कर रहे हैं 6,000, अब 6,000 भर्ती कर रहे हैं, तो ये तो हो गया ना कि इन्होंने हिस्सा लूटा था। अब दूसरी चीज हम आपको बता दें, जब मैं सरकार में था तो जब छात्रवृत्ति के लिए पिछड़े वर्ग का जब प्रेजेंटेशन था तो सामान्य वर्ग के 7 लाख बच्चे थे और पिछड़े वर्ग के 24 लाख आठ हजार लगभग 25 लाख बच्चे थे, तो इन्होंने 700 करोड़ सामान्य वर्ग के लिए बजट दिया और 700 करोड़ इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए बजट दिया। जब मैंने कहा कि जब सामान्य वर्ग के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दे रहे हो तो पिछड़ी जाति के भी सभी बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति दो, इस बात की जानकारी मैंने जब वहाँ प्रेजेंटेशन में रखा तो वहाँ मुख्यमंत्री से नोकझोंक हो गई। हमारे जितने भी कैबिनेट में बैठे हुए लोग थे कोई बोल नहीं रहा था उस समय, डर के नाते कि हमारा मंत्रालय चला जाएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने निडर होकर के वहां मैंने लड़ा, जिसको मैं सदन से लेकर सड़क तक तमाम चैनलों अखबारों में इस बात को मैं कहता रहा कि पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। 1700 थाने हैं, 1700 थाने में 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं दिया। 826 ब्लॉक है उसमें हिस्सेदारी नहीं, 350 तहसीलें हैं उसमें हिस्सेदारी नहीं दिया। इसे अब हम कितना सबूत आपको गिनावे इनके
बिल्कुल आप कुछ जो चीजें कह रहे हैं सर वो शायद पुरानी भी बात है जब आप मंत्री थे, तो बहुत लोगों का ये कहना है कि हाँ ओबीसी की जो समुदाय है वो बहुत ही गुस्सा थी, लेकिन जब जुलाई में इतने ओबीसी वर्ग के नेताओं को जब उन्हें मंत्री पद दिया गया मतलब केंद्र में, तो फिर उसके बाद जो ओबीसी की जो गुस्सा थी वो घट गई है। क्या आप कह रहे हैं कि ऐसी बात ऐसा कहना गलत होगा? फिर
अभी आचार संहिता 8 तारीख को लगी, अभी इसी 8 जनवरी को ना, 7 जनवरी को अभी इसी इको गार्डन लखनऊ में हजारों बच्चे धरना दे रहे थे कि हमारा आरक्षण लूटा गया है, हमारा जो है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के बच्चे धरना अपने हिस्से की मांग कर रहे थे और यही योगी जी पुलिस से पिटवाए हैं अभी 7 तारीख को। अब ये मंत्री लोग जो बने हैं ये चुनावी मंत्री बनाए गए, ये भाजपा को वोट दिलाने वाले मंत्री बनाए गए कि तुम लोग जाओ ये झुंझुना बजाओ और पिछड़ों दलितों को बाकाओ और भाजपा को वोट दिलाओ। इनके मंत्री बनाने से समाज खुश नहीं है क्या? इनके मंत्री बनने से क्या शिक्षा यहाँ लागू हो गई, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो गई क्या? इनके मंत्री बनने से घरेलू बिजली का बिल माफ हो गया क्या? इनके बनने से गरीबों का इलाज फ्री में होने लगा क्या? इनके बनने से जातिवार जनगणना हो गई? एक भी काम बता दीजिए जो इन्होंने किया हो मंत्री बनने के बाद, एक काम बता दीजिए जो पिछड़ों के लिए किया हो इन्होंने।
तो आपको लगता है सर अब तो वो कई सारे लोग छोड़ चुके हैं, आज दारा सिंह चौहान जी भी छोड़े हैं, आपने शायद वहां पे एक प्रेस वार्ता में आपने स्टेटमेंट दिया है कि 14 तारीख मतलब 2 दिन और आप इंतजार कीजिए और बहुत लोग आएंगे, तो आपके मुताबिक और आप ऐसे जो लोग अभी छोड़ रहे हैं जैसे केशव प्रसाद मौर्य और दारा सिंह जी उनको आप मिल भी चुके थे, तो कितने लोग आप सही अगर कहें तो कितने लोग हम लोग सोचे कि आने वाले हैं भाजपा को छोड़ने वाले हैं?
देखिए 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और उनके नाम हम आपको नहीं बताऊंगा, इस नाते नहीं बताऊंगा कि आपके जब तक स्क्रीन पर वो नाम न आ जाए, आपके अखबार में वो नाम न आ जाए तब तक हम नाम नहीं बताएंगे। और 14 तारीख को एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं, वो 14 तारीख को आपके अखबार में और आपके चैनल पर दिखेगा।
राजभर जी आपको मैं एक बात बता दूं कि भाजपा का कुछ दिनों पहले आपको मालूम होगा जो बहुत ही मतलब पूरे राष्ट्रीय लेवल की हेडलाइंस और बड़ी खबर थी वो था कि कैसे भाजपा बंगाल हारी, लेकिन बंगाल में हमने देखा कि चुनाव के पहले बहुत लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ के गए लेकिन उनके छोड़ने से तृणमूल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हम इस बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाजपा लोग छोड़ रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा हार जाएगी, तो अगर हम बंगाल से हम इसको कंपेयर करें सर तो आप उसको कैसे देखेंगे?
देखिए बंगाल का चुनाव एक अलग था, यहाँ यूपी का चुनाव एक अलग है, बिहार का चुनाव अलग, अलग अलग स्टेटों का अलग अलग वातावरण है। बंगाल में भी ये गए थे ना पूर्ण बहुमत की सरकार 200 सीट जीतने गए थे ना, कई सीट जीत के आए, ये जहाँ जाते हैं वहाँ मतलब कि 2/3 सीटें जीतते हैं। और यूपी में आपको बता दूं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, अपने समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, माननीय दारा सिंह चौहान जी बड़े नेता हैं उनकी एक बड़ी पकड़ है, और ये लोग नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को अपने पाले में नहीं ले गई होती। इन लोगों के इकट्ठा होने से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके पहले वो क्यों नहीं सरकार बना लिए, जब ओम प्रकाश राजभर और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय दारा सिंह चौहान जैसे तमाम बैकवर्ड नेता वहां खड़े हुए, तब जाके बीजेपी की सरकार बनी थी। अब वही बैकवर्ड नेता जो सरकार बनाने वाले लोग थे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने जा रहे हैं। और बीजेपी गलत फहमी न पाले, ये हम गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 10 तारीख को 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना दरवाजा बंद करके घर से बाहर नहीं निकलेंगे। देख लीजिएगा।
और आप कह रहे हैं एक दर्जन मंत्री जो हैं वो छोड़ देंगे। ये पूछना था सर आपसे कि अगर भाजपा, क्योंकि वो भाजपा की एक ये जरूर उनकी क्वालिटी है कि वो जल्दी से अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर उसका सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो अब ओबीसी समुदाय के लिए कुछ स्कीम अनाउंस करे, कुछ नया करे, अगर वो ओबीसी सेंसस अभी अनाउंस करते, इन सब के करने से क्या आपको लगता है कि फिर से बदल जाएगा?
कुछ नहीं होगा। अब तो आचार संहिता लग गई उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ ही क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा काम था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जिसमें निषाद बिंद, केवट मल्ला, राजभर पाल, प्रजापति कुमार, अर्कवंशी बंजारा, बहेलिया, खंगार, आरत, इन लोगों को, जुल्हा, दुनिया अंसारी, इन तमाम साथियों को हिस्सा मिलना था। एक छोटा सा काम तो ये लोग कर ही नहीं पाए, जिसको लेकर के हम इस्तीफा दे दिए। 3 साल से रद्दी की टोकरी में रखे हैं फाइल कि क्या करेंगे इनके। अब वो दिन लद गए इनके। अब ये बता रहा हूं कि ये 28 साल तक दिखाई नहीं देंगे यूपी में। जनता इनसे, चले जाइए गांव में, किसान इनके ललका सार से, योगी मोदी जी के ललका सार से किसान परेशान है। सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रामा सेंटर में 70% मरीज योगी जी मोदी जी के ललका सार से लड़के आ रहे हैं। आप चले जाइए नौजवानों के बीच में, तो बेरोजगारी को लेकर के वो डंडा लेके खड़ा है कि 16 पेपर कराए, 16 पेपर लीक हो गया, नौकरी नहीं दे पाए। आप चले जाइए व्यापारी के यहाँ जीएसटी ला करके उनकी कमर तोड़ दिया, नोटबंदी करके गरीब से लेके अमीर तक सबका काम बंद कर दिया, करोड़ों लोगों का नौकरी छीन लिया, इनको कौन पसंद कर रहा है?
तो सर आप क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ओबीसी समुदाय का जो वोट बैंक देखा जाता है तो करीब 40% है, और या जी 52%, और अगर हम देखें तो यादव अगर हटा दें तो उस वो 12% के हैं, तो आप क्या कह रहे हैं पूरी जो ओबीसी वोट बैंक है, आप कह रहे हैं कि उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा अब सपा के पास आ जाएगा?
देखिए, सपा ने बड़ी बारीकी से काम किया कि अब जातियों के लीडर बना के पार्टियों ने वोट लिया, विभिन्न जातियों में नेता बना करके पार्टियों ने वोट लिया, और वो उस पार्टी से समाज का भला नहीं कर पाए। तो अब तमाम जातियों ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली, अपनी अपनी जाति को जोड़ लिया
जी।
जिसका रिजल्ट आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी छोटी छोटी पार्टियों से समझौता करना शुरू कर दिया। पूरे देश की राजनीति छोटी छोटी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमने लगी, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा कदम निकाला कि राजभर को जोड़ा, पूर्वांचल में 163 सीटों पर 12-22% वोट को जोड़ लिया, प्रजापति को, पाल को, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 7% वोट अकेले पाल प्रजापति का, 7-7.5% अकेले पाल प्रजापति का है। इन्होंने अर्कवंशी को जोड़ दिया, आरक को जोड़ दिया, खंगार को जोड़ दिया, उसके साथ साथ कुशवाहा को जोड़ दिया, चौहान को जोड़ दिया, पटेल को जोड़ दिया। तो जो पार्टियां लेकर के समाज में घूम रहे हैं, तो अब वो धीरे 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 अपनी पार्टी के साथ खड़े हो गए, अब उन पार्टियों को अखिलेश जी ने अपने साथ खड़ा कर लिया
जी।
अब वोट बचा कहां से?
लेकिन सर एक चीज जो सब लोग यही कहते हैं कि पिछले चुनाव में भाजपा को बहुत, आपको भी मालूम है 2017 में उनको 325-403 में से इतने सारे सीट मिल गए थे, तो उनको करीब 50% अगर मोटा मोटा इतना मिला वोट परसेंटेज जो है, तो ये अगर घट भी जाए सर तो फिर भी वो 200 के करीब ले आएंगे, तो आप उन लोग जैसे प्रशांत किशोर या फिर बाकी लोग जो हैं उनका ये कहना है कि अगर, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लोग नाराज हैं भाजपा से, लेकिन घट के भी कि वो जो इतनी जो मेजोरिटी की है फिर भी वो बना लेंगे सरकार, तो आपको लगता है वो गलत बात है?
वो गलत बात है। देखिए अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम पूर्वांचल में हमारी कम्युनिटी अकेले 12-22% है, अब ये बीजेपी से हट गया, अब उस इलाके में घटा लीजिए 12-22% खाली एक जाति का, इनको झूम करके प्रजापति पाल उड़ दिया था उसका 7.5% घटा लीजिए, उस वहां इनको झूम करके 100% वोट दिया था उसमें से घटा लीजिए उनका 6% वोट है, चौहान इनको वोट दिया था उसमें से घटा लीजिए, अब उसके बाद आइए इनको झूम के पटेल वोट दिया था उसको घटा लीजिए, इनको यादव भी वोट दिया इस बार नहीं देगा, इनको मुसलमान भी वोट दिया था इस बार नहीं देगा, और मजे की बात की इस बार बड़ी संख्या में निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मझवार कश्यप तुरहा तुरैया ये इनको 100% वोट दिया था, इस बार अमित शाह जी आए थे पूरा उठवा भड़का दिए भाजपा के खिलाफ कर दिए, ये आए थे आरक्षण देने 17 दिसंबर को रमाबाई मैदान में, लाखों निषाद जुटा था आरक्षण लेने, अमित शाह जी आए थे जुमला सुना के 15 लाख की तरह चले गए, और उनके समन्वय में लोग नारा लगा दिए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हजारों कुर्सी तोड़ दिए, क्या ये भाजपा के या जो विश्लेषक है उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि लाखों लोग नाराज होकर के रमाबाई से गए तो क्या ये भाजपा वोट देंगे? ये किसको खुश किए हैं? आप गांव में जाइए, किसान इनके सार से इतना परेशान है कि दिन में तो काम कर रहा है, रात को डंडा लेके खेत में अपनी फसल अगो रहा है, तो डंडा लेके तैयार है कि आवा तो लोग के वोट दे सही। हम
आखिरी प्रश्न सर कि आपने जो भी कहा वो कई सारे मुद्दे जो हैं वो राज्य के हैं, और बहुत लोगों का ये मानना है क्योंकि आप मोदी जी इतनी बार 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 प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो शायद भाजपा फिर से वो इमोशन और प्रधानमंत्री के पॉपुलैरिटी से वो शायद निकाल लेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर वो
देखिए आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि आज पहले एक समय था कि टीवी पर लोग मोदी जी को देखने के लिए भीड़ मचती थी, आज स्थिति है कि अगर टीवी चैनल कोई खोलता है मोदी जी की फोटो अगर दिखाई दी तो लोग कहते जल्दी हटावे के तुरंत चैनल बदल देते हैं। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि अभी मोदी जी और उत्तर प्रदेश में घूम घूम के रैली किए और योगी जी को किनारे कर दिया, जैसे आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में योगी जी को पैदल कर दिया, तो जब पूरे प्रदेश में किरकिरी हुई तो फिर हाथ रख के कंधे पर 5 दिन बाद फोटो जारी करते हैं। दूसरा वही केशव मौर्य को दिल्ली बूटा बुला करके सोफा पर बैठा के बतियाते हैं। और तीसरा बात आप देख लीजिए, जितनी भी रैलियां हुई हैं मोदी जी की, गांव में सरकारी बस लगा के 3 चिट्ठी लिखा कि पीडब्ल्यूडी 40 लाख देगा, सिंचाई विभाग 20 लाख देगा और फला विभाग 10 लाख देगा, और सरकारी बसों में गांव में समूह की औरतें, मनरेगा के मजदूर, संविदा के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी उन्हीं बसों में भर भर के लाए गए और मोदी जी की रैली में। एक दौर था कि मोदी जी को देखने के लिए लोग अपने से टूट पड़ते थे, आज मोदी के नाम पर कोई जाने को तैयार नहीं है, और इनसे क्या कह करके ला रहे हैं कि चलो तुम्हारा मानदेय बढ़ाया जाएगा, तुम्हारा बकाया दिया जाएगा, और जब ये सब वहां मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, मीटिंग में बैठ रहे हैं, जब मोदी जी लोरी सुनाने लग रहे हैं कई लोग उठ के वहां से जाने लग रहे हैं और गाली देते हुए भाग के आ रहे हैं, ये है इनका खेल।
जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी तरह समझाया और हिंदुस्तान टाइम से बात की। चुनाव के आते वक्त कुछ अगले हफ्तों में फिर से आपसे बातचीत जरूर करेंगे और आपके अनाउंसमेंट के बाद भी 2 दिन बाद भी। धन्यवाद धन्यवाद।
इफ यू एंजॉयड दिस एडिशन ऑफ ऑन द रिकॉर्ड डोंट फॉरगेट टू राइट टू अस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन ट्विटर @sunetrasee and on Instagram, Ms. Sunetra, to tell me what you thought of this interview and if you'd like me to interview a particular person. That's it for now. Do like and subscribe and share this podcast. I'll be back again with another edition. Till then, goodbye.
This was a Hindustan Times production brought to you by HT Smartcast.
HT Smartcast.